الحمد لله وكفى والسلام على المصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں. معرف القرآن کی جلد نمبر 3 کو اپنے نصاب کی کتاب کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے، اور جو ابھی آیات تلاوت کی گئیں 56, 57 اور 58 سورہ انعام کی 56, 57 اور 58 آیات ہیں، تو ان کا ہم پہلے ترجمہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد خلاصہ تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ان آیات کی حضرت ہیں معروف مسائل لکھے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم اگلی آیات کے اوپر چلے جائیں گے انشاءاللہ. پچھلی جو آیات تھیں وہ ان کی کافی لمبی تفصیل معارف و مسائل کے اندر حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، تو اس کے اوپر ہم نے کافی وقت لگایا. دو مجالس ہفتہ وار اس کے لیے ہم نے استعمال کری. تو یہ پیر والی کلاس میں بھی اسی کو ڈسکس کیا، اور جمعے کا جو درس ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی انہیں کو ہم نے ڈسکس کیا. آخری بات ان کے اندر جو ہم نے پڑھی وہ توبہ سے متعلق تھی. ٹھیک ہے کہ ایمان رکھنے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، اور اس غلطی کے اوپر جب وہ اللہ تعالیٰ سے نادم ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، یعنی توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر مزید انعامات بھی ان کو دے دیتے ہیں، مزید انعامات سے ان کو نوازتے ہیں. تو توبہ کا ایک اہم کانسیپٹ جو ہمارے لیے سب سے ضروری ہے سمجھنا، وہ یہ ہے کہ الندم توبہ، توبہ جو ہے وہ اپنے گناہ، اپنی غلطی کے اوپر ندامت کا نام ہے. تو ظاہر ہے کہ جب تک کوئی نادم نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا، تو اس وقت تک جو ہے وہ توبہ نہیں کر سکتا، اس کے بغیر توبہ ہو ہی نہیں سکتی. اسی وجہ سے غلطی کو تسلیم کرنے کی اپنے اندر نا ایک سکت، اپنے اندر ایک استعداد، ایک ability to acknowledge one's mistakes اور to accept one's mistake، یہ پیدا کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ جیسے بھی پیدا کی جائے. حقیقی غلطیاں جو ہم مانتے ہیں جن کو غلطی، ان کو تسلیم کر کے پیدا کی جائے، یا جو غلطی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن ہمارے بڑے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو ہم پھر بھی اس کو تسلیم کر لیں، اپنی عقل کے اوپر ناز نہ کریں، اپنے علم کے اوپر ناز نہ کریں کہ نہیں میری عقل میں تو یہ غلطی غلطی نہیں ہے، میری سمجھ میں میرے علم کے مطابق تو یہ غلطی غلطی نہیں ہے، اس وجہ سے میں نہیں مانوں گی، یہ ہرگز نہ کریں. اس وجہ سے جمعے کے درس میں یہ بات بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے باقاعدہ با ادب با نصیب، جو ہمارے حضرت کی ایک بہت ہی عمدہ اور بنیادی کتاب ہے، علم کی کتاب ہے، جہالت کی کتاب نہیں ہے، علم کی کتاب ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس کتاب کے اندر حضرت نے اس کوٹ کو یعنی اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کی طرفداری کر کے بحث کی تو وہ ہلاک ہو گیا. اپنے نفس کی طرفداری یعنی اپنے اوپینین کی، اپنی رائے کی، اپنے जो समझ है अपनी अकल की तरफदारी करके बहस करी आगे, वो हलाक हो गया। क्यों हलाक हो गया? इसका जवाब अगर हम आपसे पूछें, क्यों हलाक हो जाता है जो अपने नफ्स की तरफदारी करके बहस करता है, वो क्यों हलाक हो जाता है? ये हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 मिनट की जो डिस्कशन है उसी में से ही ये सवाल पूछ रहे हैं, उसी में से ही, उसी में इसके जवाब मौजूद है। तो अपने नफ्स की तरफदारी करके जिसने बहस करी वो क्यों हलाक हो गया? इन द लाइट ऑफ पास्ट 5 मिनट्स ऑफ डिस्कशन, जवाब दीजिए। अपने नफ्स की तरफदारी करके हलाक हो गया, क्यों? जो सवाल किया जा रहा है ना उसका जवाब चाहिए, कोई और नई बात नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि उसने हकीकत में तौबा नहीं की, क्योंकि वो तौबा से महरूम हो गया ना। क्योंकि किसी और ने जवाब दिया था कि उसने अपनी मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट करी, ठीक है ना, वो नादिम नहीं हुआ अपनी गलती पर। ठीक है, तो जब वो अपनी गलती पर नादिम नहीं हुआ तो तौबा नहीं हुई, और जब तौबा नहीं हुई तो वो गलती तो बरकरार रही ना, वो मिस्टेक, वो गुनाह, वो बरकरार रहा। और जब गुनाह बरकरार रहा तो फिर गुनाह के ऊपर तो क्या होती है? पिटाई होती है। ठीक है, तो पिटाई से फिर क्या होता है, क्या होती है पिटाई से, क्या होती है? हलाकत होती है। ठीक है, जब गुनाह बाकी रहा तौबा कर लेते मिट जाता, लेकिन वो नहीं मिटा क्योंकि तौबा करी नहीं, बहस कर रहे हैं, राइट, बहस कर रहे हैं, तौबा करी नहीं, तो अब तो फिर पिटाई होगी। और जब पिटाई होगी, बड़े की तरफ से जब पिटाई होगी, तो फिर बड़ा कौन है यहाँ पर? अल्लाह ताला। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई कहर नाजुल होगा, कोई अजाब आएगा, चाहे किस भी शक्ल में आए, जरूरी तो नहीं है कि सैलाब की शक्ल में अजाब आए, जरूरी तो नहीं है कि कड़क की शक्ल में अजाब आए, जरूरी तो नहीं है कि जलजले की शक्ल में अजाब आए। अजाब तो इंडिविजुअली किसी भी शक्ल में अल्लाह ताला भेज सकते हैं, तो हलाकत हो जाएगी ना फिर उसके ऊपर, हलाकत हो जाएगी ना। इस वजह से बहस नहीं करनी चाहिए, चाहे समझ में आ रही हो बात, चाहे ना समझ में आ रही हो, बस ये जुमला याद रखें, सारी गलती मेरी ही थी, सारी गलती मेरी ही थी, सारी गलती मेरी ही थी। लिख लिया ना इस जुमले को, दिल दिल के ऊपर तो लिख लिया होगा इंशाल्लाह, कागज पे ना भी लिखा। ठीक है, तो ये जुमला बोलना सीखना है, बड़ा मुश्किल जुमला है वैसे, ये इससे ज्यादा मुश्किल जुमला और कोई है नहीं। ठीक है, सारी गलती मेरी ही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल, कह दीजिए, फिर अपने नबी अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाते हुए डायरेक्ट मुखातब हैं, कुल, कह दीजिए। ये जो डायरेक्ट खिताब होता है ना कुरान मजीद के अंदर, ये अमूमन सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं। कभी कभी अल्लाह ताला जो है वो सहाबा कराम से भी डायरेक्ट खिताब फरमाते हैं, और कभी कभी अल्लाह ताला सारे इंसानों से भी डायरेक्ट खिताब फरमाते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की जो एड्रेसिंग है कुरान मजीद के अंदर, ये अपने हबीब अलैहिस्सलाम से तो है, कुल कह करके, आप कह दीजिए, या अरअयता, क्या आपने नहीं देखा। ठीक है, लेकिन सहाबा कराम से भी, या अय्युहल मोमिनून, ए ईमान वालों, यानी नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ दूसरे सहाबे भी शामिल हो गए। कभी फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसानो, सारे इंसानों से, उसमें काफिर भी शामिल हो गए। ठीक है, तो यहां पर कुल यानी नबी अलैहिस्सलाम से डायरेक्टली कहा जा रहा है कि इन्नी नुही, तो कह दीजिए कि बेशक मुझको मना किया गया है। नहा यनहा का मतलब होता है मना करना, ठीक है, उर्दू में नहीं का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, तो वो नफी, एक्चुअली अरबी में उसको नफी कहते हैं, जो उर्दू में नहीं कहते हैं ना, अरबी में उसको नफी कहते हैं, यानी ये बात नहीं हुई, इसको नफी कहा जाता है अरबी में। लेकिन अरबी में जो नहीं होता है वो नहीं, नून गुन्ना नहीं होता उसके अंदर, तो उसका मतलब होता है मना करना। तो मुझे मना किया गया, इन्नी नुही तू अन के आबुदा, मैं इबादत करूं, अल्लदीना, उनकी जिनकी तदعون من دون الله, तुम जिन यानी उनको जिनको, अल्लजीना का तर्जुमा होगा उनको जिनको, ठीक है, तदعون तुम पुकारते हो, तुम उनसे दुआ करते हो, जिनसे तुम दुआ करते हो, तदعون من دون الله, अल्लाह को छोड़कर. दुआ सिर्फ अल्लाह से करनी है, किसी और से दुआ नहीं कर सकते. बुतों से तो क्या, किसी जिंदा इंसान से भी दुआ नहीं कर सकते. जिंदा इंसान तो क्या किसी अल्लाह के वली से भी दुआ नहीं कर सकते. वली तो क्या किसी अल्लाह के नबी से भी दुआ नहीं कर सकते. राइट, दुआ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से करनी है. ठीक है, दुआ को मतलब क्या होता है, दुआ का पुकारना, अपने आप को छोटा समझ के, उसको बड़ा समझ के, अपने आप को मोहताज समझ के और उसको कादिर समझ के पुकारना, इसको दुआ कहते हैं. ठीक है, तो ये जो काम है ना जिसको दुआ कहते हैं, ये सिर्फ अल्लाह के साथ करना. ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मुझको मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम अल्लाह को छोड़ करके दुआ करते हो, जिनको तुम अल्लाह को छोड़ करके पुकारते हो. ठीक है, यानी पुकारना अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है वो गैर अल्लाह है, अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है वो गैर अल्लाह है, उसको नहीं पुकारना है. ठीक है, कुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम, कह दीजिए कि मैं नहीं, अत्तबिउ इत्तबा करता हूं, ला नहीं इत्तबा करता हूं, ला का मतलब होता है नहीं, उर्दू में जो नहीं होता है. ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली नफी हो रही है, यहां पर नफी हो रही है, अरबी वाली नफी. ठीक है, कि इनकार किया जा रहा है, ला अत्तबिउ मैं नहीं इत्तबा करता हूं, अहवाअकुम तुम्हारी ख्वाहिशात की. हवा कहते हैं ख्वाहिश को, उर्दू में हम कहते हैं ना हवा चल रही है. ठीक है, तो हवा चल रही है, ये अरबी में हवा जो है वो ख्वाहिश को कहा जाता है. ख्वाहिशात भी जो है ना वो हवाओं की तरह चलती हैं, इसी वजह से शायद उर्दू जुबान जो बनी तो उसमें जो चलने वाली विंड्स होती है ना, उसके लिए उर्दू के बनाने वालों ने, बाबाए उर्दू, राइट, उर्दू बनाने वाले जिन्होंने उर्दू के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करने शुरू किए, कोई बैठ करके कोई कोई लेबोरेटरी के अंदर उर्दू बना नहीं रहा था. ये उर्दू जुबान जो है ना, या कोई भी जुबान हो, ये लेबोरेटरी के अंदर बैठ के बनाई नहीं जाती, या कारखाने में बैठ के नहीं बनाई जाती. ये इंसानी मुआशरे में लोग किसी आवाज को किसी खास मानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, किसी खास मानी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी जुबान बनती है, फैक्ट्री में नहीं बनती. ठीक है, तो जो लोग उर्दू की जुबान इस यानी बना रहे थे, तो उन्होंने अरबी से अल्फाज लिए, बहुत सारे अल्फाज अरबी से लिए. तो अरबी के अंदर एक लफ्ज था हवा, जो कि नफ्स की ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है, नफ्स की ख्वाहिश के लिए. तो इन उर्दू वालों ने उसको फिर चलने वाली हवाओं के लिए इस्तेमाल किया. ठीक है, कितनी मारिफत थी उनके पास, कितना गहराई थी उनकी सोच में, कि उन्होंने इस बात को देखा कि नफ्स की ख्वाहिशात भी जो है ना, ये हवाओं की तरह इंसान को उड़ाती हैं. जिस तरह हवा उड़ाती है ना इंसान को, या किसी भी चीज को उड़ाती है, उसी तरह इंसान के नफ्स की ख्वाहिशात जो होती हैं वो भी उसको उड़ाती हैं. ठीक है, इधर से उधर पहुंचा देती हैं. तो ला अत्तबियु अहवाअकुम, मैं नहीं इत्तबा करता, मैं नहीं फॉलो करता तुम्हारी ख्वाहिशात को. मैंने तो अपने ऊपर वाले की ख्वाहिशात को फॉलो करना है. तुम लोग कोई थोड़ी ऊपर वाले हो, तुम लोग तो नीचे वाले हो, या ज्यादा से ज्यादा बराबर वाले हो, यानी मेरे जैसे इंसान हो. मैं तुम्हारी ख्वाहिशात क्यों फॉलो करूं, अपने रब की ख्वाहिश को छोड़कर मैं तुम्हारी ख्वाहिश क्यों फॉलो करूं. ठीक है, तो ला अत्तबियु अहवाकुम कद वललतु, बेशक मैं तो बहक जाऊंगा, मैं तो गुमराह हो जाऊंगा, इजन जब, وما انا من المهتدين, यानी जब से मुराद के अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो फिर मैं गुमराह हो जाऊंगा, वमा अना मिनल मुहतदीन, और मैं नहीं रहूंगा हिदायत पाने वालों में से। मुहतदुन, जिसको हिदायत मिल गई उसको मुहतद कहते हैं, ठीक है। तो मुहतदीन जो हिदायत पाने वाले लोग हैं, मैं उनकी सफ में से बाहर निकल जाऊंगा अगर मैंने तुम्हारी ख्वाहिशात के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। डेमोक्रेसी, राइट, डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, और वही एक डेमोक्रेसी है, ये हमारे यहाँ तो एक तमाशे चलते रहते हैं ना, डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी, ठीक है। वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज द डेमोक्रेसी, दैट इज द ओनली डेमोक्रेसी। वो क्या है, जितने बड़ी तादाद में लोग होंगे उनकी बात मानी जाएगी, जो बड़ी तादाद है लोगों की उनकी बात मानी जाएगी। क्या मतलब भाई, उनकी ख्वाहिश मानी जाएगी, उनकी ख्वाहिश मानी जाएगी, वो जो कहना चाह रहे हैं बस वही नकारा खुदा समझा जाएगा, उसी के ऊपर कानून बन जाएंगे, ठीक है। तो कुरान मजीद कहता है कि अगर मैं तुम लोगों, नबी अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, कह दीजिए इन लोगों को, अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की इत्तेबा करने लगूं मैं तो गुमराह हो जाऊंगा और मैं हिदायत पाने वालों में से नहीं हो जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि हिदायत तो ऊपर से आती है, हिदायत तो ऊपर से आती है, अल्लाह से आती है, उसकी मैंने इत्तेबा करनी है तब मैं हिदायत वालों में से होऊंगा ना। अगर मैं नीचे वालों की इत्तेबा करना शुरू हो जाऊंगा, यानी जमीन वालों की इत्तेबा करना शुरू हो जाऊंगा, तो फिर उनकी ख्वाहिश तो अल्लाह की हिदायत के खिलाफ होती है। क्यों? इसलिए कि जो आम लोग होते हैं वो नफ्स की मान के चलते हैं, वो अल्लाह की मान के नहीं चलते हैं, वो नफ्स की मान के चलते हैं। और नफ्स क्या है? झूठा खुदा। नफ्स क्या है? झूठा खुदा। ये सच्चा खुदा नहीं है, ये असली खुदा नहीं है, ये तो झूठा खुदा है। तो पिछली एक मर्दों की भी क्लास अभी पिछले हफ्ते जो हुई थी, अगर आप में से किसी ने ली हो तो उनको याद होगा कि हमने उसमें फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि दो खुदा होते हैं, दो खुदा, एक सच्चा खुदा एक झूठा खुदा, एक हकीकी खुदा एक नकली खुदा। हकीकी खुदा अल्लाह है और नकली खुदा नफ्स, जो कि हमारे अपने अंदर है, हर बंदे के अपने अंदर एक नफ्स है, यानी झूठा खुदा। हर बंदा अपने अंदर झूठा खुदा लेके चल रहा होता है, ठीक है। वो खुदा उसको हुक्म देता है ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। इन हुक्मों को नफ्स की ख्वाहिशात कहा जाता है, ठीक है। तो अगर इंसानों की इत्तबा की जाएगी अल्लाह की इत्तबा को छोड़ करके, अल्लाह के हुक्म को छोड़ करके, तो फिर ये झूठे खुदा की इत्तबा होगी, और झूठे खुदा की इत्तबा करने से कोई हिदायत वाला नहीं बनता, वो गुमराही वाला बन जाता है, ठीक है। तो कद वललतु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन, कि इस सूरत में तो फिर मैं गुमराह हो जाऊंगा और मैं हिदायत पाने वालों में से फिर नहीं रहूंगा। अब हम अपने गरेबान में झांक के देख लें, हम ऊपर वाले किसी हुक्म को मानते हैं या हम अपने खानदान वालों के हुक्मों को मानते हैं या अपने मुआशरे वालों के हुक्मों को मानते हैं या जो है वो किसी और किस्म के जो लीडरान हैं, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स हैं या ड्रामा के अदाकार हैं या फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार हैं, वो जो बातें कहते हैं वो जो बातें करते हैं हम उनकी मानते हैं, किसकी मानते हैं हम? क्या ऊपर से अल्लाह के हुक्मों का हमें पता भी है कि हुक्म हैं क्या अल्लाह ताला के? अगर अल्लाह के हुक्मों का हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे मानेंगे उन हुक्मों को? हमें तो पता भी नहीं है ना कि अल्लाह के हुक्म हैं क्या, तो हम कैसे मानेंगे? हम जो है वो दुनिया वालों के हुक्म मान रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर हम तो हिदायत वाले नहीं हो सकते हम, ठीक है। कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, कह दीजिए तीसरी तीसरी आयत में, वैसे तो पीछे भी कुल 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 चल ही रहा था लेकिन अब यहाँ भी जो मजमू आयात हैं इनके अंदर तीसरी आयत कुल, कह दीजिए इन लोगों से, इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, बेशक मैं अपने रब की तरफ से एक बय्यिना पर हूं, बय्यिना पर हूं। बय्यिना क्या चीज होती है? वो बात जो के दलाइल से मजबूत होती है, जो के जिसके ऊपर एविडेंस मौजूद होती है,
जो ऐसी बात होती है कि अगले बंदे को समझ में आ जाए, उस बात को बय्यना कहते हैं। इसी को दलील भी कहते हैं, क्योंकि दलील से बात जो की जाती है ना, वो अगले बंदे को समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हर बंदे के लिए दलील के लेवल्स भी मुख्तलिफ होते हैं। एक छोटे बच्चे के सामने आप जो है वो बहुत ही कोई सोफिस्टिकेटेड दलील नहीं दे सकते, वो उसको समझ में नहीं आएगी। आप जो है ना वो छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं, उसको बात समझा रहे हैं, लेकिन उसके सामने आप दलील के तौर पर कोई पीएचडी लेवल का आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं, पीएचडी लेवल का आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं छोटे बच्चे से बात करने में। अब छोटा बच्चा जो है वो उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही, तो आप कहें कि भाई मैंने तो इतनी जबरदस्त दलील दी थी, इसको क्यों नहीं बात समझ में आ रही, इसका कसूर है, इसको बात समझ में नहीं आ रही। तो भाई उसका कसूर नहीं है, आपका कसूर है, क्योंकि आपने बच्चा नहीं देखा, आपने जो है बस दलील देखी कि बस मेरे पास है ना दलील, तो बस मैं मार दूंगा उस दलील को। ठीक है, अब बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है, जो भी उस वो उसका मसला है, उसको नहीं समझ में आ रहा तो उसका मसला है, मेरा तो काम हो गया, मैंने तो दलील मार दी। ठीक है, नहीं, ऐसे बात नहीं करनी है, बल्कि जिससे बात की जा रही है उसके लेवल की दलील देनी, तब वो दलील कहलाएगी, वरना वो दलील नहीं कहलाएगी, आपकी बात बय्यना नहीं कहलाएगी। ठीक है, उसी तरीके से नौजवान नौजवान से जो बात की जाती है उसको एक एक अलग दर्जे की दलाइल की जरूरत पड़ती है, जिससे कि उसको बात समझ में आए। राइट, अब नौजवान से आप जो है ना वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे किसी बच्चे से बात की जाती है, और आप कह रहे हैं कि जी मैंने तो बच्चे को तो बात समझ में आ जाती है मेरी, इसको क्यों नहीं समझ में आती। भाई इसलिए कि आपने नौजवान के लेवल की दलील नहीं दी है, आपने नौजवान से ऐसे बात करी है जैसे बच्चे से बात की जाती है। फर्क क्या है नौजवान से बात करने में और बच्चे से बात करने में, क्या फर्क है? माशाल्लाह खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, तो खवातीन के लिए तो ये सबसे अहम टॉपिक होना चाहिए कि बच्चे से कैसे बात की जाती है। तो बच्चे से कैसे बात की जाती है, नौजवान से कैसे बात की जाती है, क्या फर्क है? अकल का फर्क है, ये तो उन दोनों में फर्क हम पूछ ही नहीं रहे। ठीक है, अब आप डांट वांट पढ़ने का शौक हो रहा है, डांट डांट खाने का है, हम ये को थोड़ी पूछ रहे हैं कि उन दोनों में क्या फर्क है, हम तो ये पूछ रहे हैं कि दलील में क्या बात बात में क्या फर्क होना चाहिए, बात में क्या फर्क होना चाहिए। जी क्या फर्क है, सोचे जरा, बच्चों की रेलेवेंट मिसालों के साथ, बच्चों को रेलेवेंट मिसालों के साथ उसके लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। जी कोई और जिनको सवाल समझ में आया हो तो वो जवाब देने की कोशिश करें। बच्चे में और नौजवान में अकल का फर्क है, चलें ठीक है, ये तो आपने नई बात बताई हमें, दोनों में अकल का फर्क है। अच्छा, तो फिर अब जो है वो बच्चे से जो बात की जाती है और बड़े से जो बात, जो नौजवान से जो बात की जाती है, तो इन दोनों में क्या फर्क होना चाहिए? चलें इस सवाल को दूसरे अंदाज से हम रखते हैं कि बच्चे और नौजवान में जो अकल का फर्क है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर दिमाग होता है, नौजवान के अंदर दिमाग प्लस कुछ और चीज होती है? ठीक है भाई, दिमाग तो बच्चे में भी वैसे ही होता है, नौजवान के अंदर भी वैसे ही दिमाग होता है, तो फिर क्या फर्क है बच्चे में और नौजवान में? बच्चे दलील नहीं मांगते, बड़े को दलील चाहिए होती है, इल्म कम होता है बच्चे में। ठीक है, ये है जवाब, दलील नहीं मांगते, बड़े को दलील चाहिए होती है। वो तो बात सही है, आपने सवाल जवाब भी सही दिया है, लेकिन हम तो इससे आगे की तरह बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो बच्चों को मोहब्बत से समझाना चाहिए, नौजवानों को दलाइल से समझाना चाहिए, नौजवानों के साथ फिर अकड़ करनी चाहिए, डांटना डपटना चाहिए और साथ दलाइल भी देने चाहिए। नहीं, मोहब्बत तो दोनों के साथ करनी चाहिए, ठीक है, दोनों से मोहब्बत से बात करनी है, बच्चे से भी और नौजवान से भी, ठीक है। फर्क ये होता है कि उसकी अकल कम होती है और नौजवान की अकल ज्यादा होती है। क्या फर्क? कि बच्चे का इल्म कम होता है, नौजवान का इल्म ज्यादा हो चुका होता है, ठीक है ना। बच्चे का इल्म कम होता है, नौजवान का इल्म उसके मुकाबले में ज्यादा हो चुका होता है, ठीक है। बूढ़ों के मुकाबले में कम होता है, या उधेड़ उम्र लोगों के मुकाबले में नौजवान का इल्म कम होता है, लेकिन बच्चे के मुकाबले में तो ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो बच्चा जो है ना, वो माँ बाप के ऊपर ज्यादा एतमाद करता है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती, या उसको देखनी नहीं चाहिए। हम तो माशाल्लाह, अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे, कुछ अकल सलीम अता फरमाए, हम तो पैदा होते हुए उसको दाखिल करवा देते हैं। आजकल तो ये चल रहा है ना, पैदा होने से पहले जो है वो किंडरगार्टन में नाम लिखवाते हैं, पैदा होते ही जो है वो उसको बस शायद वो पता नहीं 6 महीने का हो या साल का हो, उसको फिर बाहर भेज देते हैं, ठीक है ना। 2 साल का होता है तो फिर तो डेफिनेटली बाहर भेज देते हैं। अगर घर में रहे तो लोग ताने देते हैं कि तुमने अभी तक घर में बिठाया हुआ है उसको, ठीक है ना। तो ये तो आज की मुसीबत है ना कि स्कूल में डालना है, स्कूल में डालना है, ठीक है। 2 साल का हुआ, स्कूल में डालो, तो उसको बाहर का एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन तरीका तो ये नहीं है ना, छोटे बच्चे को तो बाहर का एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए, बाहर का एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कहें, इसको दरियानुसी बात कहें या आप उसको जो भी कहें, हकीकत यही है, छोटे बच्चों को बाहर का एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए। उसको तो खाली घर का एक्सपोजर मिलता है ना, वो सिर्फ माँ को जानता है, बाप को जानता है, घर के अंदर जो और लोग रहते हैं उनको जानता है, तो उसने तो बाहर की दुनिया देखी नहीं होती है। तो वो फिर घर वालों के ऊपर एक इतमाद करता है, तो घर वाले जो बात उसको बता देते हैं ना, वो उसको मान लेता है, ठीक है ना, बताते हैं मान लेता है, वो ईमान वाला होता है, यानी अंधा इतमाद करने वाला, उसको दलाइल नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से थोड़ा बड़ा होता है ना, फिर भी उसका ये इतमाद बाकी रहता है। लेकिन जब वो एक सर्टन एज से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 7 8 साल से ज्यादा हो जाते हैं ना, अब उसके इल्म के अंदर बाहर की इंफॉर्मेशन भी आनी शुरू होती है। अब उसको आप घर में बंद करके नहीं रख सकते, अब उसका मिलना जुलना और लोगों से भी होता है, वो उनसे सुनता है, उनकी बातों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है या कर रही होती है, ठीक है। इस तरह से उसका इल्म जो है वो बढ़ रहा होता है। अब जब उसका इल्म बढ़ रहा होता है ना, तो अब उसका वो एतमाद का लेवल आपके ऊपर वो कम हो रहा होता है, अब आपके ऊपर वो ऐसा अंधा एतमाद नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब आपको जो है दलील की जरूरत पड़ती है, उसको बात समझाने के लिए यू हैव टू मेक सेंस, यू हैव टू मेक सेंस। नॉन सेंस किस्म की बातें करके आप उससे उसको कायल नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं। हम बड़े होने के बाद भी ना उसको बच्चे ही समझ रहे होते हैं, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लाड, मेरा दुलारा। तो बस दुलारा फुलारा आप बेशक उसको कहती रहे, लेकिन वो आप बच्चा तो नहीं है ना, आपके कहने से वो बच्चा तो नहीं बन जाएगा। तो अब नॉनसेंस किस्म की बातें उसके साथ ना किया करें, सेंसिबल बात किया करें, जिसके अंदर कोई नकली दलील मौजूद हो या कोई अकली दलील मौजूद, ठीक है। अकली दलील मौजूद हो या कोई नकली दलील मौजूद, नकली दलील का मतलब समथिंग दैट इज एस्टैब्लिश्ड, प्री एस्टैब्लिश्ड, चाहे वो कुरान की बात है, चाहे वो हदीस मुबारका की बात है। अगर वो कुरान मजीद को मानता है तो कुरान मजीद की दलील इस्तेमाल करेंगे, उसको नकली दलील कहा जाएगा, यानी कॉपी करें वहां से, नकल करें वहां से कुरान मजीद से। ये हदीस को, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को मानता है, अल्लाह ना करे कि आपने उसको ऐसे स्कूल में दाखिल करा दिया जहां पे उसको मुनकरे हदीस बना दिया स्कूल वालों ने, फिर तो हदीस की दलील मत पेश करें उसके सामने, क्योंकि वो मुनकरे हदीस बन चुका है ना स्कूल की वजह से, ठीक है ना। या किसी ऐसे स्कूल में दाखिल करा दिया जहां पे वो दहरिया बन चुका है, ठीक है ना, दहरिया, स्कूल वालों ने ऐसा जबरदस्त साइंस पढ़ाई है उसको कि वो दहरिया बन गया, अब आप कुरान की दलील इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर वो तो कुरान को मानते ही नहीं है अब, तो आप कुरान की दलील इस्तेमाल करना भी कोई फायदा मंद नहीं, ठीक है ना। तो फिर तो प्योर अकली दलील इस्तेमाल करनी पड़ेगी उस बच्चे के साथ, ठीक है। वो तो बच्चे और बड़े की समझ में फर्क होता है उसके इल्म की वजह से, और जब इल्म जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे दलील की जरूरत पड़ती है। लेकिन दलील कौन सी होनी चाहिए जो कि उसके नजदीक भी अहमियत रखती है, जो उसके नजदीक अहमियत नहीं रखती ना, उसको आप बतौर दलील के इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, काश के हमारे वालदैन जो हैं वो इस बात को समझ जाएं, उसके मुताबिक अमल भी करना शुरू हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करते उल्टी सीधी बातें अपने बच्चों के साथ, और उनके बच्चे फिर हमारे पास आकर के सवाल पूछते हैं तो हम कहते हैं यार वेयर शुड वी स्टार्ट, कहाँ से हम शुरू करें। ठीक है ना, क्योंकि अम्मा ने जो है ना वो इतना बेड़ा गर्क करके उनको किया हुआ होता है। पहली बात तो वो आते ही नहीं है पूछने के लिए, पहली कि भाई अम्मा अगर ऐसी हैं तो इनके शेर पता नहीं कैसे होंगे। भाई अक्सर बच्चों तो यही समझते हैं ना कि अगर अम्मा ऐसी हैं, ऐसी हो गई हैं क्लासेस सुन सुन करके, तो पता नहीं इनके शेर कैसे होंगे। उसकी वजह क्या थी, अम्मा साहिबा को समझ में नहीं आ रही थी बात भाई, तो उन्होंने जो है वो शेर को भी ऐसे बना करके अपने बच्चे के सामने पेश किया कि वो बच्चा और उखड़ गया। ठीक है ना, जैसे कुछ माँ बाप जो हैं वो क्या करते हैं अपने घरों के अंदर, कि वो कहते हैं कि मैं जो कुछ करूंगी अपने हजरत से पूछ के करूंगी। अब वो बच्चा जो है वो कोई छोटी सी चीज भी पूछ रहा है, कोई बड़ी सी चीज पूछ रहा है ना, तो अम्मा का ये जवाब, मैं हम तो बस जो करते हैं वो हजरत से पूछ के करते हैं। तो अब बच्चा जो है ना उसको ये जवाब दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो तो फिर शैतान उसको ये कहेगा ना, ये हजरत तो लगता है कोई बहुत ही खौफनाक किस्म के कुछ, कोई कोई वो डायनासोर किस्म की कोई चीज नहीं, राइट, ये तो मेरी हर बात के रास्ते में रुकावट है। अम्मा तो वो भी बस जो कह जो काम मैं इनसे पूछती हूँ ना, कहती है तो मैं हजरत से पूछ के बताऊंगी। ये तो भाई हजरत को आपने तो एक यानी एक खौफनाक किस्म का देव बना दिया है बच्चे के साथ, तो अब तो जाहिर सी बात है वो नफरत करेगा ना हजरत से, या वो बच्ची जो है वो हजरत से नफरत करेगी ना, क्योंकि आपने बनाया है इस, आपने आपकी बेवकूफी ने ये काम किया है। ऐसे नहीं किया करना चाहिए, बहुत ही गलत किस्म की ये लोगों ने ये हरकत करी है अपने घरों के अंदर, जो हमें बाद में पता चली तो बहुत समझाया कि यार ये नहीं किया करो प्लीज। ठीक है, या ये कि अगर बिल्कुल ही खिलाफ नहीं हुए तो अब वो जो है वो अगर हजरत के पास आके पूछते भी है ना, तो ऐसी उल्टी समझ की हुई होती है उनकी, बनाई हुई होती है, कि अब हम ये सोचते हैं कि यार मैं कहाँ से शुरू करूं उसको समझाना, बात इतना उलट हो करके बेचारी आई है मेरे पास, बेचारी है या जो भी है, लेकिन इतना उलट समझ हो करके आप मेरे पास आई है, मैं कहाँ से शुरू करूं उसको समझाना। भाई तो भाई अजीब मामला किया हुआ। तो हवा हवा की बात हो रही थी, हम वापस आ जाते हैं अपने इसके ऊपर, आयात के ऊपर। फरमाता है कि जी मैं तो बैयना के ऊपर हूं, मैं तो खुली दलील के ऊपर हूं। खुली दलील क्या होती है, जो कि मुखातब को समझ में आ रही हो। मानना या मानना ये अलग चीज है, हमारा मसला ये है कि समझ में आने वाली बात को हम मानने वाली बात से कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आने वाली बात को हम मानने वाली बात से कंफ्यूज कर देते हैं। हम समझते हैं कि जो बात समझ में आ जाती है ना उसको मान भी लिया जाता है, जो बात समझ में आ जाती है उसको मान भी लिया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, अबू जहल को सब बात समझ में आती थी, मानता नहीं था। उसी तरह यहूदियों को नबी अलैहिस्सलाम की हर बात समझ में आती थी, मानते नहीं थे। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। कहने का मकसद ये है कि हमारा काम है बात को समझाना, और उसका काम है जिसको आपने बात समझाई है उसका काम है कि उसको मानना, लेकिन अगर वो नहीं मानता है फिर उसको मुश्किल होती है, जाहिर है उसको सजा भी मिलती है। ठीक है ना, वो उसका फेल है माने या ना माने, हमारा फेल नहीं ये है। यानी देखें, अगर उसने बात मान ली तो उसको जजा मिलेगी, राइट, यानी उसको इनाम मिलेगा। अगर उसने अच्छी बात जो हमने उस तक पहुंचाई है उसको मान लिया है ना, उसको इनाम मिलेगा, और अगर उसने नहीं मानी तो उसको फिर सजा मिलेगी। हमें किस बात के ऊपर सजा मिलेगी ये आप बताएं जवाब। उसको तो जब बात उस तक पहुंच गई, अब मानने पे जजा मिलेगी ना मानने पे सजा मिलेगी, हमारे लिए क्या क्राइटेरिया है, हमें किस बात के ऊपर जजा मिलेगी और हमें किस बात के ऊपर सजा मिलेगी। हमें इस बात के ऊपर जजा मिलेगी कि उसने हमारी बात मानी या नहीं मानी, अगर वो मान लेता है तो हमें जजा मिलेगी यानी इनाम मिलेगा, और अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो हमें सजा मिलेगी इस पर। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें किस बात के ऊपर जजा और सजा मिलती है कि हमने बात समझाई नहीं। अगर हमने बात समझाई तो हमें जजा मिलेगी, और अगर हमने बात नहीं समझाई तो हमें सजा मिलेगी। तो हमारे लिए ये स्टैंडर्ड है और उसके लिए वो स्टैंडर्ड है, मानना या ना मानना। ठीक है, तो अब जो हम तमाशे करते फिर रहे हैं ना कि हम बात नहीं समझाते अगले बंदे, हम बात अगले बंदे को नहीं समझाते, ठीक है ना। याद रखें, इसके ऊपर हमें सजा मिलती है, इसके ऊपर हमें सजा मिलती है। ऐसा ही नहीं है कि कोई बात नहीं छोड़ दिया जाएगा भाई, ये हमारा करने का काम है। नहीं करोगे तो सजा मिलेगी, करोगे तो जजा मिलेगी। ठीक है, अच्छा। तो नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन लोगों को आप कह दीजिए कि मेरे पास तो मेरे रब की तरफ से पहुंची हुई दलील है, यानी रब ने तो मुझे पूरी दलील के साथ बात पहुंचाई है, ठीक है। और तुम्हारा हाल ये है कि तुम उस दलील की तकजीब करते हो, वकज्जब तुम भी, रब ने मुझे दलील पहुंचाई, मैंने वो दलील तुम तक पहुंचा दी, और तुम्हारा हाल ये है वकज्जब तुम भी। ये जो वाव है ना, ये हालिया है, यानी इसका तर्जुमा और से नहीं करते बल्कि इसका तर्जुमा करेंगे कि हाल ये है कि कज्जब तुम भी, तुम उसकी तकजीब करते हो, तुम उसको झुठलाते हो, ठीक है। मा इंदी, मेरे पास नहीं है, मा तस्तअजिलूना बिही, कि जिस बात की तुम जल्दी करते हो ना, तस्तअजिलून उजलत करना, ये उजलत से ये वर्ब फॉर्म बनती है, तस्तअजिलूना बिही, मेरे पास वो चीज नहीं है जिसकी तुम जल्दी करते हो, बिही जिसकी तुम जल्दी करते हो, तस्तअजिलून मा इंदी, आई डोंट हैव इट, मेरे पास नहीं है वो चीज। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इन का मतलब है नहीं, अल हुक्मु हुक्म कमांड अथॉरिटी, नहीं है कोई अथॉरिटी, इन अल हुक्म नहीं है किसी किस्म की अथॉरिटी, इल्ला लिल्लाह सिवाय अल्लाह के लिए, सिवाय अल्लाह के पास, सिवाय अल्लाह, फॉर अल्लाह, एक्सेप्ट फॉर अल्लाह, देर इज नो अथॉरिटी, देर इज नो कमांड एक्सेप्ट फॉर अल्लाह, इन अल हुक्मु इल्ला लिल्ला, यकुस्सुल हक, वो बयान करता है हक, हक बात, अल हक वो बयान करता है, कस्सा यकुस्सु किस्से बयान करना, लेकिन इसको बात को बयान करने के मानी में भी, खाली जरूरी है पूरी स्टोरी बयान करें, इसको हम स्टोरी समझते हैं नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव अपने मतमय नजर, वो अपना मतमाई नजर बयान करता है जो कि अल हक है, वह हुआ खैरुल फासिली, और वो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है, फैसला करने वाला, फासिल, फासिल कहते हैं फैसला करने को, फैसला का मतलब क्या होता है, फैसले का मतलब होता है फसल क्रिएट कर देना, डिफ्रेंशिएट कर देना, जो गलत बात है उसको एक तरफ कर देना, जो सही बात है उसको दूसरी तरफ कर देना, हक और बातिल में तमीज कर देना, इसी को फैसला करना कहते हैं, क्योंकि अरबी के लफ्ज फसला यफसलू से निकला, ठीक है। तो वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। कुल, कह दीजिए इन लोगों से आप मजीद ये कह दीजिए, लो अगर अन्ना इंदी, बेशक मेरे पास, अन्ना जिस तरह इन्ना होता है बेशक, उसी तरह अन्ना जब जुमले के बीच में आए तो वो अन्ना पढ़ा जा, अन्ना कहा जाता है उसको,
इन्ना नहीं होता वो, इन्ना तो शुरू में इस्तेमाल होता है। बेशक मेरे पास इंदी मा तस्तअजिलून बिही, जो जिस चीज की तुम उजलत कर रहे हो ना, जो चीज तुम कह रहे हो कि बस जल्दी से ले आओ, यानी जो चीज तुम डिमांड कर रहे हो, तस्तअजिलून इस्तअजला यस्तअजिलू, ठीक है, जिस चीज की तुम डिमांड कर रहे हो कि जल्दी से वो चीज आ जाए, अगर वो चीज मेरे पास होती, मेरे इख्तियार में होती, ये लोग किस चीज की डिमांड कर रहे थे, ये लोग किस चीज की डिमांड कर रहे थे, जल्दी से बता दें, टाइम खत्म हो रहा है, हो चुका है क्लास का, ये लोग किस चीज की डिमांड करते, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों से आप कह दीजिए कि अगर वो चीज मेरे पास होती जो तुम जल्दी से मुझसे चाहते हो, डिमांड करते हो मुझसे, कौन सी चीज, ये लोग क्या डिमांड कर रहे होते थे। पीछे इतनी सारी आयात में हमने ये चीज पढ़ी है, ठीक है, अजाब का डिमांड, अजाब की डिमांड कर रहे होते थे, ख्वाहिशात की परवी पैरवी, ख्वाहिशात की पैरवी की डिमांड कर रहे होते थे। नहीं, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, जिसमें वो ख्वाहिशात की पैरवी की डिमांड कर रहे होते थे कि हमारी ख्वाहिशात आप मान लीजिए, ठीक है, बल्कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था, वो भी यही कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, ये लोग अजाब की डिमांड कर रहे होते थे, लेकिन अजाब को हम अपने लिए, हमारे लिए किताब हिदायत है ना, हम कुरान मजीद क्यों पढ़ रहे हैं, उनकी कहानियां पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं ना कि वो ये ऐसे करते थे, वो ये वैसे करते थे, तो ये तो कहानी पढ़ना हो गया, मेरे लिए इसमें क्या हिदायत है, तो इसको अपने लिए हिदायत बनाने के लिए लफ्ज अजाब को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो मुसलमान है ना, हम तो अजाब की डिमांड नहीं करते, राइट, हम तो अजाब की डिमांड नहीं, हमें तो डिमांड के बगैर ही अजाब आ जाता है हमारे ऊपर, है ना, ऐसे ही है ना, जो इतने जलजले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, है तो ये अल्लाह का अजाब, कुछ लोग कहते हैं कि ये हुकूमतों का अजाब है, लेकिन हुकूमत किसने बनाई, राइट, हुकूमत जो है वो किसकी मर्जी से काम करती है, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है ना, तो हुकूमत का जो अजाब है वो भी तो अल्लाह ही का अजाब है ना, पता नहीं ये बात क्यों नहीं आगे समझाते, ठीक है, बस एक इल्जाम, जाहिर अल्लाह पे तो इल्जाम डालने से रहे ना मौलवी साहब, मौलवी साहब तो फंस जाएंगे, गुमराही का फतवा लग जाएगा उनके ऊपर, अगर वो कहें कि कसूर अल्लाह का है, मेरा कसूर कोई नहीं है, कसूर अल्लाह का है, तो मौलवी साहब तो मारे जाएंगे, तो आजकल मौलवी साहब जो है ना, वो सोशल मीडिया मौलवी साहब क्या कहते हैं, ये हुकूमत का अजाब है, क्या मतलब कि कसूर हुकूमत का है, राइट, तो अब जो है उनको गुमराही का फतवा नहीं लग सकता, मेरा कसूर कोई नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, हमारा कसूर कोई नहीं है, अवाम का कसूर कोई नहीं है, ठीक है ना, अल्लाह का कसूर है, और जाहिर है अगर अल्लाह का कसूर कहेंगे तो गुमराही का फतवा लगेगा, तो इस वजह से आसान तरीका क्या है, हुकूमत का कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है, कराची के अवाम का कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का कोई कसूर नहीं है, इंडिया के अवाम का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत का कसूर है, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर जब ऐसे ऐसे हो जाएंगे तो हमारे लिए ये हिदायत कब बनेगी, अजाब का लफ्ज इस्तेमाल करने से नहीं, क्योंकि हम तो अजाब नहीं मांग रहे ना बैठ करके अल्लाह ताला से, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें लफ्ज ये इस्तेमाल करना पड़ेगा कि रिजल्ट्स डिमांड करते थे ये लोग, ये लोग नताइज की डिमांड करते थे, नताइज रिजल्ट्स, रिजल्ट्स की डिमांड करते थे, ठीक है ना, तो अब ये चूंकि नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे और दुश्मनी करते थे, तो ये उनको नबी अलैहिस्सलाम कहते थे कि देखो तुम मुझसे दुश्मनी कर रहे हो ना, तुम मेरी हर बात का इनकार कर रहे हो ना, तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा, तो अब ये कहते थे जल्दी लाओ ना उस अजाब को, जो तुम हमें धमका रहे हो, डरा रहे हो, जल्दी ना उस अजाब को हमारे ऊपर, तो वो तो अजाब डिमांड करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमने इनकी मुखालफत करी हुई है, और नबी अलैहिस्सलाम उनको यही कहते थे कि मेरी मुखालफत करोगे तो अजाब आएगा, तो ये अजाब की डिमांड करते थे। हम क्या करते हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत नहीं करते, बल्कि 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, अभी तो हमने
खूब सजाना है और जुलूस निकालने हैं और नातें भी पढ़नी है और सीरत कॉन्फ्रेंसें भी करनी है, ठीक है ना? रबीउल अव्वल का महीना है, माशाल्लाह सेलिब्रेट करना है हमने इस महीने को। तो हम तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं ना, तो हम तो अजाब ना, तो हमें ये कहा ना कोई कहता है कि भाई अवाम तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा ने? कि तुम नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे हो ना, हम अपने आप को मुखालफत करने वाला समझते हैं। लेकिन हम अजाब नहीं मांगते, हम क्या मांगते हैं, हम दूसरी साइड मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं, दूसरी साइड मांगते हैं। रिजल्ट्स तो भाई दोनों तरह के होते हैं ना, एक तो रिजल्ट होता है सजा और दूसरी रिजल्ट दूसरा रिजल्ट क्या होता है, जजा। तो हम चूंकि अपने आप को मानने वाला समझते हैं, हम समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े आशिक रसूल हैं और हम तो बहुत बड़े जो हैं वो मुसलमान हैं और बड़े इबादत गुजार हैं, तो हम क्या मांगते हैं जल्दी से, क्या मांगते हैं जल्दी से, हम सजा नहीं मांगते, हम जजा मांगते हैं, ठीक है ना? हम जजा मांगते हैं, हमें भी रिजल्ट्स जल्दी चाहिए। हाँ, दुनिया में जजा मांगते हैं, जल्दी जल्दी का मतलब तो ये हुआ ना कि भाई आखिरत की जजा तो आप रहने दें, वो तो देखा जाएगा बाद में जाके, हमें तो अभी जजा चाहिए। मा तस्तअजिलून बिही, ठीक है ना? हमें लड्डू क्यों नहीं खिलाए जा रहे, हमें जो है वो पैट ऑन द बैक क्यों नहीं मिल रहा, हमें तो अभी चाहिए पैट ऑन द बैक, यानी थपथपी शाबाश, हमें तो अभी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही हमें शाबाश, ठीक है ना? अमल कोई ये नहीं है, बस पता नहीं जो कर करा करके बस शाबाश चाहिए फौरन फौरन, ठीक है? बहरहाल ये तो हमारी हिदायत के लिए बात हो गई ना, लेकिन कुरान मजीद में जो वाकया तो उन्हीं का चल रहा है, तो हम उसी को फिर आगे चलाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों से आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास ये अथॉरिटी होती ना कि मैं तुम्हें अजाब जल्दी ला के दे दूं, लकुदी अल अमरु बैनी व बैना, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला हो चुका होता। फैसला, अमर का लफ्ज जो है उसका तर्जुमा फैसले से भी किया जाता है और उसका तर्जुमा मामले से भी किया जा सकता है, कि मामला हो चुका होता बैनी मेरे दरमियान और बैनकुम तुम्हारे दरमियान, मामला हो चुका होता। क्या मतलब कि अगर मेरे बस में होता अजाब लाना, तो तुमने जो मुझे तकलीफें दी हैं ना, ठीक है, मेरा उतना हिल्म नहीं है जितना अल्लाह का हिल्म है। अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम से फरमा रहे कि आप इन लोगों को कह दीजिए कि देखो मेरे पास इतनी बर्दाश्त नहीं है, बेशक मैं रहमतुल आलमीन हूं, बेशक मैं अल्लाह ताला का हबीब हूं, बेशक मैं इन्नका लाला खुलक नाजीम हूं, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं, अल्लाह से बढ़ के नहीं, अल्लाह की जो सिफात है ना वो अल्लाह ही की है, अल्लाह ने उसमें से मुझे वाफिर मकदार में हिस्सा जरूर दिया है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी बेहतरीन अपने बेहतरीन अखलाक में से सबसे ज्यादा हिस्सा नबी अलैहिस्सलाम को दिया था, लेकिन क्या कोई इस बात को डिनाई कर सकता है कि अल्लाह के मुकाबले में वो फिर भी कम था? क्या कोई इसको इनकार कर सकता है, कोई बड़े से बड़ा जो आशिक रसूल अपने आप को कहता है, क्या वो इस बात से इनकार कर सकता है कि अल्लाह के हिल्म के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम का हिल्म कम, राइट? अल्लाह के सबर के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम का सबर कम, वो तो काफिर हो जाएगा ना, वो जो भी कहेगा आशिक रसूल सो कॉल्ड, वो तो खुद काफिर हो जाएगा फिर, कि नहीं नबी अलैहिस्सलाम का हिल्म अल्लाह के हिल्म के बराबर था, या जाहिल होगा जो इस किस्म की बात करेगा अगर, ठीक है? तो अल्लाह ताला अजीब बात फरमा रहे हैं कि अगर मेरे इख्तियार में होता ना, लो अन्ना इंदी मा तस्तअजिलून बिही, तो फिर तो मामला तय हो चुका होता, तुम्हारे ऊपर अदाब आ चुका होता, ठीक है? वल्लाहु आलम बिस्सालिम, लेकिन अल्लाह ताला जालिम लोगों से ज्यादा वाकिफ है, ठीक है? जालिम लोगों से ज्यादा वाकिफ है का मतलब खाली ये नहीं है कि वो अल्लाह ताला को ये पता है कि ये जालिम है, ये जालिम है, ये जालिम है, बल्कि अल्लाह को ये भी पता है कि ये कितना जालिम है, ये कितना बड़ा जालिम है, ये कितना कम जालिम है, ये कितना मॉडरेट किस्म का जालिम है, और अल्लाह को ये भी पता है ये बंदा अभी तो जालिम है लेकिन कल को इसने अपने जुल्म से तौबा कर लेनी है। क्या ये अल्लाह को नहीं पता कि अभी तो जालिम है लेकिन फ्यूचर में इसने अपने जुल्म से तौबा कर लेनी है, मैंने इसको जिंदगी ज्यादा देनी है, ये अपनी जिंदगी में तौबा कर लेगा, और अल्लाह को ये भी पता है कि इसने तौबा नहीं करनी है। यानी अल्लाह का जो इल्म है ना, ये ऐसा है कि अल्लाह को सिर्फ इंडिविजुअल्स का नहीं पता कि ये जालिम है और ये मजलूम है और ये जालिम है और ये मजलूम है, नहीं, अल्लाह को ये भी पता है कि ये कितना बड़ा जालिम है, ये कितना गहरा जालिम है और ये कितना सुपरफिशियल किस्म का जालिम है। पता ऐसे ही ऊपर ऊपर से डेंगे मारता रहता है, अंदर से बड़ा कच्चा किस्म का इंसान है ये भी अल्लाह को पता है ना हम कितने बड़े जालिम हैं या कितने छोटे जालिम हैं। और ये भी अल्लाह को मालूम है ना कि हम अभी जालिम हैं, कल को जो है वो हमने मजलूम बन जाना है, यानी तौबा कर लेनी है, ठीक है। और हम अल्लाह को ये भी पता है कि आज अगर हम मजलूम हैं तो कल को हमें जालिम बन जाना है। अल्लाह का इल्म तो ऐसा है, ठीक है। अब ऐसे इल्म वाले के साथ हमारा क्या रवैया है, हम क्या अल्लाह ताला के साथ करते हैं, ये तो हमें भी अपने गृहबान में झांक के देखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है ना वो अपनी जो सिफात बयान करनी शुरू करी हैं और आगे के आयात के अंदर भी, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान है हमारे परवरदिगार की। अल्लाह ताला हमें अपनी शान को समझने की तौफीक अता फरमाए, मानने की तौफीक अता फरमाए, और उसके मुताबिक अपने जहनों की सोचों को तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह ताला से ये टूट के दुआ मांगनी चाहिए। आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह।